ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वैदिक कर्म मार्ग पालन करने का उद्देश्य है भौतिक सुख। तो वैदिक पद्धति पालन नहीं करके भौतिक सुख भी उपलब्ध है, परंतु वैदिक पंथ पालन नहीं करने से पाप होते। किम कर्म किम कर्म इति कवयो यत्र मोहिताः। कर्म अकर्म, अकर्म इस प्रसंग में कर्म का मतलब वैदिक विधि के अनुसार कर्म करना, और अकर्म तो वो नहीं करना, और विकर्म है पाप कर्म। तो इंद्रिय सुख जो उपलब्ध है वैदिक पंथ पालन नहीं करने से, तो वो इंद्रिय सुख भोगने का फल है महान पतन। और जो वैदिक विधि के अनुसार इंद्रिय सुख प्राप्त होते हैं वे पुण्यशाली लोग हैं, और ऐसे लोग और भी अवसर मिलते हैं और भी इंद्रिय सुख भोगना। परंतु जो वैदिक विधियां पालन नहीं करके जनवा जैसे इंद्रिय सुख भोग करते हैं, वो वैदिक विधि अवलेह करने का फल से तो पतित होते। परंतु कर्म मार्ग उच्च नहीं है। कर्म मार्ग पालन का उद्देश्य है वो इंद्रिय सुख जो हर एक जीवन में उपलब्धि है। तो इसलिए ज्ञानी होने चाहिए। दुखालयम शाश्वतम, बार बार हमें ये दो शब्द का विचार करना चाहिए कि यदि हम इंद्र के समान अवसर प्राप्त करेंगे इंद्रिय सुख भोग करने के लिए, तो फिर भी हम दुखी होंगे, क्योंकि इस पूरा भौतिक संसार दुखमय ही है। तो इसलिए ज्ञानी होना चाहिए, और ज्ञान मार्ग का वर्णन है इस भगवद गीता में। ज्ञान और योग दोनों का लक्ष्य है मोक्ष प्राप्ति। मुनिर मोक्ष पुरायणाः, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि सामान्य मुनिगण मोक्ष परायण, अर्थात उनका लक्ष्य है इस भौतिक संसार से मुक्त होना। तो ज्ञान और योग लगभग एक ही मार्ग ही है। ज्ञान मार्ग में विशेषकर विचार करना है, विवेक करना है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस भौतिक संसार में क्या है सुख दुख, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभा जयो जयो। तो इस प्रकार ज्ञानी होना चाहिए, अर्थात सब कुछ जो होते हैं इस भौतिक संसार में वो सबों से उदासीन होना चाहिए। इसका अर्थ नहीं है कि ज्ञानी तो कुछ काम नहीं करे। अर्जुन की इच्छा थी वो युद्ध छोड़ना और इस प्रकार त्यागी होना, परंतु उस प्रकार सन्यासी जो निराश होने से सब कुछ त्याग करते हैं वो तो वास्तविक सन्यासी नहीं है। इसके बारे में भगवान कृष्ण ने कहा, अनाश्रित कर्म फलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्नी न चाक्रियः। सन्यासी कौन है जो गृह धर्म चढ़ के अनाश्रित कर्म फलम होते, अर्थात वो वैदिक कर्म नहीं करते, गृहस्थों का कर्म दैनिक क्रियाकलाप नहीं करते, और नहीं करने से चाहते कि वो कर्म करने से वो कर्म फल जो उद्भूत होते तो वो सब कर्म फल से मुक्त हो जाओ, और निराग्नि वो सन्यासी का कर्म सन्यासी सब विषय थोड़ा कठिन है, क्योंकि आजकल वो वैदिक विधि पालन करने वाले तो नहीं है, शायद एक दो है, बहुत कम ही है। तो गृहस्थों वैदिक कर्मकांड गृहस्थों का एक कर्तव्य है उनका घर में एक अखंड दीप रखना, और वो दीप का आग से जो ब्राह्मण है तो अपना घर में कम एक बार दिन में या दो बार दिन में या तीन बार दिन में हवन यज्ञ करते हैं, और उस दीप से यज्ञ करना है, और कुछ ब्राह्मण है जो अरुणी लकड़ी लेके तो बिना दूसरा आग तो खाली दो लकड़ी का क्या बोलते हैं ऐसे करने से तो आग अपने आप आता है, और वो दीप से रसाई घर में पाक घर में वो लकड़ी जो जलाना है वो सब दिव्य अग्नि मान जाते, वो सब आग अग्निदेव के अभिव्यक्ति है, और इस प्रकार प्रकाश के लिए यज्ञ करने के लिए और पाक करने के लिए तीन हेतु से एक अखंड दीप हर एक गृहस्थ का घर में रखना चाहिए। तो जो सन्यासी है वो उसका एक नियम है कि आग से कुछ नहीं करते, इसलिए सन्यासी निराग्नि बोलते। परंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि वास्तविक सन्यासी वो व्यक्ति जो औपचारिक रूप से त्यागी बन जाते वो नहीं है, सन्यासी है वो व्यक्ति जो काम करते हैं परंतु वो काम के फल भोगने के इच्छुक नहीं है। तो ये सब विषय भगवद गीता में है, कर्म कर्म त्याग संन्यास योग देवताओं, और एक बहुत बड़ा विषय भगवद गीता में है प्रकृति के तीन गुण, और ये तीन गुण का प्रभाव कैसे होते हैं, कैसे हम सात्विक या राजसिक या तामसिक प्रकार जीवन व्यतीत कर सकते हैं, और सात्विक होने से, राजसिक होने से और तामसिक होने से हम क्या क्या फल मिलते हैं। ऊर्ध्वंग छंति सत्वस्तो मध्यम तिष्ठति राजसाः, जघन्य गुण वृत्तिस्तो अधो गच्छन्ति तामसाः। जो सात्विक है ऊपर जाते, जो राजसिक तो मध्यस्थल में रहते हैं, और जो तामसिक है तो नीच स्थिति मिलती है। और तीन गुण के अतीत होना चाहिए, वो तीन गुण के अतीत की अवस्था मुक्ति बोलते हैं। मांगचे व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यायतन ब्रह्म भूयाय कल्पते, वो ब्रह्मभूत स्तर बोलते हैं। तो सत्वगुण भी एक बंधन, रजगुण और तमगुण सत्वगुण से बहुत नीचे निम्न है, परंतु सत्वगुण भी एक बंधन ही है। त्रिभीर गुणमाया भाय भाय ए भी सर्वमिदं जगत मोहितं नाभिजानाति मामेव्य परमव्ययम्। तीन गुणों से श्री कृष्ण कहते हैं, तीन गुणों से पूरा जगत विमोहित रहते, मुझको नहीं जानते। मोहितं नाभिजानाति मामेव्य परमव्ययम्, कि श्री कृष्ण परम है और तीन गुण के अतीत है। लोग जो तीन गुणों से मोहित है तो नहीं समझते। तो सत्वगुण भी एक बंधन है। क्योंकि सत्वंग संजायते सुख, सत्वंग संजायते ज्ञानम, वो ज्ञान जो सत्वगुण में होते हैं वो अविविक्त हो जाए, कि सब कुछ एक ही है, इम्पर्सनल, मायावादी जैसे। और सत्वगुण में सुख होते हैं, परंतु वो सुख तो भक्ति सुख नहीं है, इसलिए वो भी मायक है। और वो सुख जो सत्व गुणी होने से अनुभूत होते हैं, तो वो सुख भी एक बंधन ही है। क्योंकि यदि हम सोचे हाँ मैं सात्विक हूँ, सब कुछ ठीक ही है, मैं विरक्त हूँ, वेद ज्ञानी हूँ, सात्विक हूँ, ब्राह्मण हूँ, परंतु उसमें कृष्ण भक्ति नहीं है, तो वो भी माया है। तो ये सब विषय भगवद गीता में है। और ज्ञान मार्ग तो कैसे संभव होने चाहिए, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गविहस्यनि शुनि चैव स्वपाके च ब्राह्मण समद पंडित समदर्शिनः। तो विद्वान विनम्र ब्राह्मण और गाय हाथी चंडाल कुत्ता सब एक ही जैसे देखना चाहिए, ये समदर्शन कहते हैं। एक ही इस प्रकार क्योंकि सब आत्मा ही है, तो ये समदर्शन बहुत है, यही सात्विक ही है, यही ज्ञान का फल ही है। परंतु केवल ज्ञानी होने से वो तो परम स्तर नहीं है। ज्ञानी है जो विवेक से सब कुछ देखते हैं और सब कुछ जो जगत में चलते हैं उससे उदासीन हो। और योग्यांग तो योगाभ्यास करते हैं। दोनों ज्ञानी और योगी दोनों का लक्ष्य है इंद्रियों का दमन करना और निरपेक्ष होना, उदासीन होना, और इस प्रकार ब्रह्म निर्वाणम गच्छति। ब्रह्म निर्वाण अर्थात मुक्त होना। परंतु वो मुक्ति परम मुक्ति तो नहीं है। परम मुक्ति है श्री कृष्ण की सेवा में। तो और योग अभ्यास जो है वो बहुत कठिन ही है। भगवान कृष्ण अर्जुन को योग मार्ग का वर्णन व्याख्या किया है और कैसे शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य तो पवित्र तीर्थ में एक आसन रेगना है, समतल आसन, और शांत जगह में जिसमें कोई दूसरे लोग नहीं है, और आसन में बैठना है जिसमें शरीर, पीठ, गर्दन, सिर सब सीधा होना चाहिए, और इस प्रकार प्राणायाम करना, और इस प्रकार धीरे धीरे सब इंद्रियों का दमन करना है। तो यही योगाभ्यास कठिन ही है, और इसलिए योग पद्धति का वर्णन सुन के अर्जुन भगवान कृष्ण को बताए कि इस प्रकार योग अभ्यास करने से इंद्रियों का दमन करना और मन दमन करना बहुत कठिन अभ्यास ही है, क्योंकि चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाति बलवद्दृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्कृतम्। अर्जुन ने कहा कि मन अति चंचल ही है और उसको दमन करना तो लगभग संभव नहीं है, क्योंकि मन तो वायु जैसे इधर उधर जाता है और एक क्षण में भी मन को स्थिर करना बहुत कठिन ही है। तो कैसे ध्यान करना है यदि मन अनियंत्रित रहते हैं? तो श्री कृष्ण अर्जुन की बात स्वीकार किया कि असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च विद्यते। तो श्री कृष्ण स्वीकार किया कि मन दमन करना बहुत ही कठिन है, परंतु संभव है वैराग्य और अभ्यास। तो इस प्रकार योग पद्धति बहुत ही कठिन है और उसका फल है योग सिद्धि प्राप्त करना या निर्विशेष ब्रह्म में लीन हो जाना या परमात्मा में लीन हो जाना। तो परम योग क्या है? कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, इसके बारे में भगवान कृष्ण स्पष्ट बोले ki yoginam api sarvesham madgatein antaratmana shraddhavan bhajate yo maam samayukta tamo mataha. To sabhi prakar ke yogi mein shreshth yogi wo jo mujh mein puri shraddha karte hain aur is prakar mere bhakt hote hain. Yoginam api sarvesha madgatein antaratmana, jo mujhko unka atma se abhinna jaise ban gaya hai aur puri shraddha se mera bhajan karte, wo shreshth yogi yuktatamo. Yog ka matlab yukt hona. To param yukti hai Shri Krishna ke saath seva mein shraddha se. To Bhagavad Gita yadi hum yatharup grahan karenge to spashti hoga ki bhakti shreshth upay hi hai. Iske bare mein Shri Krishna ke bahut vachan hai Bhagavad Gita mein. Mahatma ka varnan, Mahatma nastu maang partha daivin prakriti maashritaha vajantya nanya manaso gyatva bhutadim avyayam. Mahatma kon hai? Samanyata kisi bhi sadhu ko hum Mahatma bolte. Aur Kurukshetra jaise punya sthalon mein bahut aise Mahatma hi hai. To Mahatma ka kya kya lakshan hai? To dari hone chahiye aur nangra kapra pehna chahiye. Wo to Mahatma ke lakshanon mein hai. Mahatma kon hai? Vastavik Mahatma jo pura Krishna ashriti hai, jinke ashrit hai Krishna aur Krishna ki antaranga shakti mein, wohi Mahatma hai. Arthat jo bhakt hai wohi Mahatma hai. Aur Bhagavan Shri Krishna ka bhajan karte kaise? Ananya manasa. Mahatma hai aise bhakt jinka man sadaiva Krishna ka bhajan mein tanmay rehte. Aur bhajan jin ananya manaso gyatva bhutadim avyayam. Main sabhi vastuon ke mool shrot hoon aur main avyaya. To bar bar is avyaya shabd Shri Krishna kehte hai Bhagavad Gita mein, visheshkar swayam ke bare mein. Shri Krishna ka adi aur ant nahi hai. Shri Krishna sadaiva paripurna hi hai aur in mein kabhi bhi kuch hras kuch kami nahi hote. Shri Krishna sadaiva purna hi hai. To Mahatma kya karte? Satatam kirtayanto maam yatantascha jiravrataha namaschantascha maam bhaktya nitya yukta upasate. Mahatma Krishna ke bhakte. O kya karte? Satatam kirtayanto maam, sadaiva kirtan karte, mere kirtan, arthat Krishna naam karte. Satyam aur dhridhavrat se, puri tivrata se Krishna bhakti karte aur namaskar karte Krishna ko. Aur is prakar sadaiva yukt hote, wo param yogi hi hai kyunki ve sadaiva Krishna ki upasana mein niyukt rehte. To kuch samay ke pahle ek bhakt jo Punjab se aaya hai mujhse puche ki to alag alag log alag alag devataon भगवान की भक्ति करते। और कुछ लोग बोलते वाहे गुरु, और कुछ लोग बोलते महेश्वर शिव। तो इस प्रकार अलग अलग देवताओं है और अलग अलग लोग तो ये सब देवताओं या गुरु या किसी भी पूजा करते पूरी श्रद्धा से ईमानदारी से। तो हम जो कृष्ण कृष्ण कहते और दूसरे जो माता जी या साई बाबा बोलते, तो सब तो दिल से भक्ति करते, तो फल एक ही नहीं होगा, तो नहीं होगा। तो हमें समझना चाहिए कौन है भगवान और किस लिए इनकी सेवा करने है, और वो ही धर्म, वो ही भक्ति की परम संस्थिति है। यदि हम नहीं जानते भगवान कौन है, तो हम दूसरों को भगवान बोल के उनकी पूजा करेंगे, लेकिन वो अपराध होगा। वो व्यक्ति को बताया कि जैसे प्रधानमंत्री आते हैं और हमें पहले से पता चला कि प्रधानमंत्री आने वाले हैं, और वो प्रधानमंत्री को हार देना चाहता था, लेकिन हम नहीं जानते कौन है प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री आते हैं और साथ साथ जय साथ आत्मरक्षक भी है। तो यदि हम वो बॉडीगार्ड को देते और ओ प्रधानमंत्री हे प्राइम मिनिस्टर आपको मैं सम्मान देता हूँ, तो वो भूल होगा और अपमान भी होगा, क्योंकि जो इस देश के प्रजाओं है उनका कर्तव्य है, उचित है कि वे जानते ही तो प्रधानमंत्री कौन है। यदि हम नहीं जानते और दूसरों को वो हार देते हैं, वो वास्तविक प्रधानमंत्री के प्रति अपराध होगा। तो इस प्रकार यदि हम नहीं जानते भगवान कौन है और बोलते हैं कि तो सब तो भगवान ही है और हम किसी की पूजा कर सकते हैं, तो एक ही फल होगा, तो वो भगवद गीता का विचार नहीं है। हमें समझना चाहिए कौन है भगवान और किस लिए इनकी भक्ति करने हैं। तो यदि हम भौतिक लाभ के लिए तथाकथित भक्ति ही करते हैं, तो वो भक्ति तो नहीं होगी, क्योंकि भक्ति है आत्मसमर्पण, आत्मसमर्पण भाव। तो कौन है भगवान और किस उद्देश्य से इनकी सेवा करना चाहिए, वो सब समझना चाहिए। नहीं तो हमारी भक्ति तो सही भक्ति या पूरी भक्ति नहीं होगी। जैसे गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, यही पी अन्य देवता भक्त यजंत श्रद्धयान्विता थे पी माम कौंत यजंत्य विद्धि पूर्वक। तो यदि कोई अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, तो वो एक दृष्टिकोण से वो भी मेरी भक्ति है, क्योंकि सब देव देवियों मेरे अंश और प्रतिनिधि ही है, परंतु वो अविधि पूर्वक है, अर्थात वो सही पद्धति के अनुसार नहीं है। तो ये सब ज्ञान भगवद गीता में है, और इस ज्ञान से सभी लोग तो परम सिद्धि अर्थात कृष्ण भक्ति मिल सकते हैं, और वो भक्ति करने से भगवान के पास जा सकते। तो कृष्ण भक्ति में योग्यता है श्रद्धा, तो बड़ा पंडित होना की आवश्यकता नहीं है, और उच्च कुल में जन्म लेना की आवश्यकता नहीं है। साफ लो पापी होते हुए भी यदि कृष्ण भक्ति करते हैं वो और भी पापी नहीं होंगे। तो सब का अधिकार है कृष्ण भक्ति करना। नाम ही पार्थव्य पार्श्वच ये पी स्यु पाप योन स्त्रियो वैशस तथा शूद्रास थी पराम गतिम। See this. बच्चों जो खेलते है उसको उस साइड पर भेजो। तो सामान्यतः उच्च ब्राह्मणों क्षत्रियों भक्ति करेंगे ऐसे हम आशा करते। श्री कृष्ण कहते हैं कि नीच जन्म लेने वाले वैश्य शूद्र स्त्री वे भी यदि पूरा आश्रय लेते मुझ में और मेरी भक्ति करते वे भी मेरे पास आ सकते। तो उस समय वैश्य और शूद्र निम्न जैसे मानते आज तक, लेकिन आज आजकल तो सब राक्षस जैसे है, कोई वैदिक विधि पालन करने वाले नहीं है। तो किंग पुना ब्राह्मण किंग पुना ब्राह्मण पुण्य भक्ता राजार्षयस्तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्वमा। तो यदि नीच योनि पाप योनि के लोग भक्ति करने से भगवान के पास जा सकते हैं तो जरूर ब्राह्मणों क्षत्रियों अर्थात जो जिनकी बुद्धि जिनका कर्म फल श्रेष्ठ है वे जरूर भक्ति करने से भगवान के पास जा सकते। इसका अर्थ है कि सब लोग का अधिकार है भक्ति करने के लिए, परंतु जो उच्च स्थिति में जन्म लेते हैं उनका कर्तव्य है उनके कर्तव्य बड़ा ही है कृष्ण भक्ति करना। इसके बारे में चैतन्य महाप्रभु ने कहा भारत भूमि ते होइलो मनुष्य जन्म जा जन्म साथ करी करो पर उपकार। जो प्राणी जो जीव इस जन्म भारत में मनुष्य शरीर में जन्म प्राप्त किया है वो जीव का कर्तव्य है जन्म सार्थक करना कृष्ण भक्ति के द्वारा और फल उपकार करना अर्थात कृष्ण भक्ति प्रचार करना। तो आप सब भाग्यवान ही है कि आप सब भारत में जन्म लिए हैं, तो आपका भाग्य ही है, परंतु वो भाग्य लेने से वो योग्यता जो है तो उसको उसके अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहिए। जैसे यदि एक व्यक्ति डॉक्टर का लड़का होते माता पिता दोनों डॉक्टर हैं तो वो लड़का का बड़ा अफसर है, डॉक्टर हूँ, परंतु वो यदि चिकित्सा का विज्ञान पढ़ाई नहीं करते तो कैसे डॉक्टर होगा। तो इस प्रकार सभी भारतीय लोग का बड़ा अवसर होते हैं कृष्ण भक्ति करना, परंतु करने चाहिए, नहीं तो भाग्य तो दुर्भाग्य तो हो जाएगा। तो सबकी भक्ति करने चाहिए। इसके बारे में गीता में कई श्लोक है जिसमें सबसे प्रसिद्ध है, मन मना भव मद भक्त मद्याजी मांग नमस्कृ मामे वैश्यसी सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसि सर्वधमान परित्यज मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। श्री कृष्ण कहते मुझको चिंतन करो सदैव, मेरे भक्त बन जाओ, मेरी पूजा करो और मुझको नमस्कार करो, इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। तो इसमें कुछ कठिनाई नहीं है। सब विद्वान या मूर्ख, धनी या दरिद्र, वृद्ध या बालक, हम सब कृष्ण का चिंतन कर सकते, हम सब कृष्ण के भक्त हो सकते, हम सब कृष्ण की पूजा कर सकते और सब कृष्ण को नमस्कार कर सकते। तो ये भक्ति मार्ग बहुत ही सरल है, आनंदमय है और उसमें सावधान परित्याज, उसमें पूरा आत्मसमर्पण होना चाहिए। तो इस प्रकार कठिन है, इसमें दीर्घ काल में शास्त्र का विचार करने का जरूरत नहीं है। इस पद्धति में कठिन योग अभ्यास करने का जरूरत नहीं है। इस पद्धति में केवल श्रद्धा से श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम करने चाहिए, जिसमें मुख्य है श्रवण और कीर्तन, जिसमें कुछ भी कठिनाई नहीं है। परंतु जो कृष्ण के चरणों में शरण लेना नहीं चाहते तो ऐसे लोग के लिए कठिन ही है। कृष्ण नाम बोलना हरे कृष्ण बहुत ही सहज है और कृष्ण कथा सुनना बहुत ही सहज है, लेकिन जो कृष्ण के अभक्त है, जो दृढ़ संकल्प किए कृष्ण भक्ति नहीं करना, जो अहंकार से कृष्ण के चरण में आश्रित नहीं होंगे, जो संकल्प किया जैसे कि मैं भक्ति कृष्ण भक्ति नहीं करूँगा, तो ऐसे व्यक्ति के लिए भक्ति बहुत कठिन है। कठिनाई तो नहीं है, केवल यही कठिनाई है कि ऐसे लोग बड़ा अहंकारी हैं और कि मैं बहुत ही तुच्छ हूँ। जो सही है, सब व्यक्ति जो है बड़े छोटे, हम सब बहुत ही छोटे हैं। तो इस बात जो व्यक्ति जो स्वीकार नहीं करते तो मैं बड़ा हूँ, ईश्वर हो हम भोगी, सिद्ध हो हम बलवान सुखी, जो इस प्रकार सोचते हैं तो ऐसे व्यक्ति के लिए भक्ति करना बहुत 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 कठिन है। और इससे ऐसे लोग स्थापित भगवद गीता का स्पष्ट वाणी लेके उसका अर्थ उल्टा करना चाहते और इस प्रकार भगवद गीता में जिसमें श्री कृष्ण कहते मन मना सदैव मुझको ध्यान करो, तो जो नास्तिक ही है इस प्रकार व्याख्या करते हैं कि वास्तव में कृष्ण का चिंतन नहीं करना चाहिए, वो सनातन जो कृष्ण के अंदर में है उसका ध्यान करना चाहिए। जो कृष्ण तो नहीं बोले तो आज तक भारत में बहुत से लोग तो भगवद गीता का अनुराग करते हैं और लगभग सभी, कम से कम सब जो हिंदू है, बोलते हैं कि हम भगवद गीता को विश्वास करते हैं। लेकिन भगवद गीता में है वो तत्व ज्ञान जो है, तो उसके बारे में कुछ भी धारणा नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद का सुप्रयास था सबों को भगवद गीता का ज्ञान प्रदान करना। इस ज्ञान से सबका परम लाभ होते, इसलिए हम बार बार प्रयास करते श्रील प्रभुपाद की आज्ञा के अनुसार ये सब दिव्य ग्रंथों का वितरण करना। यही मानव समाज के लिए परम सेवा ही है। ऐसा है कुछ प्रसिद्ध आधुनिक मानव जाति के सेवा के, और इस प्रकार उन्होंने तथाकथित मानव धर्म अनुशीलन किए हैं। तो ऐसे ही कुछ प्रसिद्ध लोग जो कलकत्ता में गरीबों का उद्धार करने के लिए कुछ प्रयास किए हैं, लेकिन वो पर उपकार, वो लोग के लिए वो कल्याण जिससे उनका कल्याण होगा तो नहीं होगा, क्योंकि ये सब कल्याण कार्य तो केवल शरीर के बारे में है और नित्य सनातन आत्मा के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है। तो यही श्रेष्ठ ज्ञान है जिसका समझने से और जिसका पालन करने से अपने जीवन में सब लोग, तो वैश्य शूद्र स्त्री और उससे नीच जैसे मैं, मेरा जन्म तो म्लेच्छ देश में था, तो हम जैसे लोग हम भी भगवद गीता यथारूप सुनने से हमारा पूरा पापमय जीवन का सुधार कर सकते हैं। तो आप भी जो भारत में जन्म लिया है, जो जिनके हृदय में वो भक्ति भाव नहीं है, नहीं तो क्यों आप यहाँ आए हैं, तो मेरा विशेष निवेदन है आप सभी भक्त के श्री चरण पर कि इस भगवद गीता यथारूप अध्ययन कीजिए और उसमें वो ज्ञान जो है तो आप प्रयास कीजिए वो सब समझना, जिससे आप तैयार होंगे दूसरों को समझाना। तो भगवद गीता में खाली 700 श्लोक है और फिर भी वो एक महान सागर जैसे है। एक श्रीमद् भागवत तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति हर एक रोज भगवद गीता की पूरे श्लोक का पाठ करेंगे तो हर एक दिन वो नया अनुभूति मिलेंगे श्री भगवद गीता के बारे में। तो ये मेरा विनती है आप सभी भक्तों से कि भगवद गीता का ज्ञान वो भगवद गीता में जो है आप प्रयास कीजिए उसको समझना। कैसे? तो कम से कम हर रोज एक पन्ना भगवद गीता का पाठ कीजिए या एक श्लोक तात्पर्य के साथ, और इस प्रकार ये ज्ञान लेके दूसरों को भी इस ज्ञान दीजिए। श्रेष्ठ उपाय इस ज्ञान देने के लिए है इस भगवद गीता यथारूप दूसरों को देना, पुस्तक वितरण। उसके अलावा मौखिक रूप से वो ज्ञान जो हम भगवद गीता से मिलते वो तो दूसरों को बताना। तो इस प्रकार जैसे तैसे संभव हो आप जरा सा इस भगवद गीता यथारूप का प्रचार कीजिए। पूरे संसार में इस अभाव से, कृष्ण कथा का अभाव से पूरा जगत नगत नरक के ओर जाना है। तो यदि हम भगवद गीता यथारूप प्रचार करेंगे तो चैतन्य महाप्रभु की इच्छा से इस कलयुग में 5,000 वर्षों में एक सोना का युग आ जाएगा। तो वो हमारी आशा है। इसलिए जिससे हमारी बात सुनने से लोग प्रभावित होंगे, इसलिए हम भी भक्ति जीवन में निष्ठावान होने चाहिए। तो वो निष्ठा आएगी श्रीमद् भागवत गीता यथारूप और श्रीमद् भागवत विशेषकर ये दोनों शास्त्र का पाठ करने से। हरे कृष्णा। तो इस विषय के बारे में भगवद गीता या कोई दूसरा विषय के बारे में अगर किसी का प्रश्न हो तो जरा सब पूछिए। आप माइक से पूछ सकते हैं या नोट लिख के मुझको दीजिए। तो कुछ भक्त या यहाँ केवल आज के लिए आए हैं, खास कुछ भक्त पतियाला और राजपुर से आए हैं जो आज सुबह आए हैं और आज शाम को वापस जाएंगे, और लगते ज़्यादातर भक्त तो कल वापस प्रस्थान करेंगे, नहीं कल शाम को। तो सामान्यतः ऐसे सम्मेलन का अंतिम सत्र में हम सबको धन्यवाद कहते, लेकिन उस समय तो ज़्यादा लोग ऑलरेडी उसके पहले ही जाते हैं। तो मेरे तरफ से मैं आप सभी भक्तों को धन्यवाद कहता हूँ इस महोत्सव में अंशग्रहण करने के लिए, कि आप सब तो पूरा ध्यान से ये सब तत्व विचार सुन लेते हैं। वो गुण दुर्लभ ही है। बहुत कम लोग आजकल बहुत कम लोग हैं जो दीर्घकाल में तत्व ज्ञान सुनने चाहते। यदि कुछ मनोरंजनी बात होती है तो बहुत से लोग आएंगे, लेकिन पूरा तत्व ज्ञान बताने से ज़्यादा लोग आकृष्ट नहीं होते। परंतु इस भक्ति तत्व ज्ञान श्रवण करना, हरि नाम करना, ये दोनों के साथ भक्ति का प्राण ही है। श्रवणम कीर्तनम, श्रवणम कीर्तनम, श्रवण करना चाहिए और कीर्तन भी करना चाहिए। तो इसलिए हम श्रवण कीर्तन शिविर रखते। आजकल इस्कॉन में कीर्तन मेला भक्त की प्रिया होते, परंतु कीर्तन नाम कीर्तन करने के साथ गीता और भागवत से हमें श्रवण करना चाहिए, जिससे हम समझ लेंगे वो कृष्ण जिनका नाम हम बार बार बोलते वो कृष्ण कौन है और किस लिए हम कहते हैं, और कहने से हमें क्या फल की आशा करते हैं, तो ये सब समझना चाहिए। बहुत धन्यवाद आप सबों को आने के लिए, और सब जो सभी प्रकार की व्यवस्था की इस महोत्सव के लिए, आपको भी धन्यवाद। और सब जो श्रम किए है सेवा में, अलग अलग से बहुत ऐसे ही प्रोग्राम व्यवस्था करने में बहुत बहुत व्यवस्था करना चाहिए, और जो आर्थिक सहयोग किया आपको भी हम धन्यवाद कहते हैं। और आशा है कि इस प्रकार हम कम से कम एक बार साल में ऐसे शिविर रखेंगे, और इस प्रकार श्रवण और कीर्तन कृष्ण श्रवण करने से हमारा इस दुर्लभ मानव जन्म व्यतीत करेंगे, और इस प्रकार हमारा मन में कृष्ण होगा, जिससे अंत काल चमामेव स्मरण मुख, जिस प्रकार हम मृत्यु का समय भगवान कृष्ण के बारे में चिंतन करके हम इस शरीर त्याग करेंगे, और भगवान की कृपा से हम इनके धाम जाएंगे, हम इस भौतिक जगत में और नहीं रहेंगे। तो बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को, हरे कृष्ण। तो अगर किसी का प्रश्न हो तो पूछे। छोटे इन श्लोक भक्ता राजस्यस भक्ता राजा श्रेयस तथा, इस शब्द का अर्थ क्या है कि एक भक्त तो भक्त का कुल में जन्म लेते हैं, सिर्फ जो भक्त का परिवार में जन्म लेते हैं वो भक्त हो सकते नहीं है। सामान्यतः हम ऐसे आशा करते हैं कि वो संतान जो भक्तिमान पिता और भक्तिमाती माता से जन्म मिलते हैं तो वो भी भक्त होंगे, क्योंकि गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि योग्या जो एक जीवन में योग सिद्धि प्राप्त नहीं होते तो उनका पुनर्जन्म होते हैं श्रीमतां शुचि नाम श्रीमतां गए हे योग भ्रष्ट भी जाते जो योग भ्रष्ट होते। तो भक्तिमान वैश्य या ब्राह्मण के कुल में जन्म लेते, लेकिन बहुत उदार बहुत भक्त है, प्रसिद्ध भक्त है जो अभक्त का कुल में जन्म लिए हैं, जैसे प्रहलाद महाराज, विभीषण, शिल प्रभा के बहुत शिष्यों, ज्यादातर तो अभक्तों का घर में जन्म लिया है, तो शिल प्रभा की कृपा से भक्त बन गए हैं। वो दो नंबर। It is said in Gita that work with desire for result is in Rajagun. Then how demigod worship? With desire to go to Swarga is in Sattvagun. Ah, to samanyata I say लगता है कि देव देवियों की उपासना वो राजसिक है, क्योंकि वो देव देवी पूजा सामान्यतः होती है स्वाग प्राप्ति के लिए, परंतु गीता में श्री कृष्ण कहते हैं यजन्ति सात्विकान देवान, सात्विक लोग देव देवियों की पूजा करते हैं। तो जो स्वाग प्राप्ति के लिए देव देवियों की पूजा करते हैं वो इस प्रकार सात्विक है, क्योंकि वे वैदिक विधियों पालन करते हैं, वैदिक विधि के अनुसार वो स्वाग प्राप्त होना चाहते हैं। और जो देव देवियों की पूजा करते हैं केवल कर्तव्य से, जो ब्रह्मा जी चतुर्सन की पूजा करते हैं और ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तो ऐसे लोग सात्विक हैं। यक्ष रक्षांसि राजसं प्रीत भूत गणांश्चैव तामसं परिचक्षते परिचक्षते। नहीं हाँ बोलिए। भगवद गीता कम्स एज पार्ट ऑफ महाभारत विच इज अ स्मृति। स्मृति मीन्स रिटन बाय ह्यूमन बीइंग, रिटन बाय ह्यूमन कैन नॉट बी परफेक्ट। हाउ डू वी एक्सेप्ट भगवद गीता एज अ, भगवद गीता महाभारत में है, महाभारत स्मृति शास्त्र में आते हैं। स्मृति शास्त्र है जो किसी मानव से रचित है, तो इस प्रकार स्मृति शास्त्र अपूर्ण ही है। तो कैसे भगवद गीता श्रेष्ठ ज्ञान ही है यदि कोई मानव से रचित है? तो स्मृति शास्त्र तो शास्त्री है, वो प्रमाणिक ही है, वो काल्पनिक तो नहीं है। श्रुति तो परम प्रमाण ही है, क्योंकि अलग अलग स्मृति होते हैं अलग अलग प्रकार के स्तर के लोग के लिए, इसलिए श्रुति परम प्रमाण ही है। तो महाभारत वेद व्यास का लेख है, वेद व्यास तो साधारण मानव नहीं है, वे भगवान के अवतार ही है। और भगवद गीता य स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मां विनिश्रितात्, ये भगवद गीता भगवान की स्वयं उक्ति है, इसलिए ये परम प्रमाण ही है। भगवद गीता में कृष्ण भगवान अर्जुन को ज्ञान देते हैं, तो वो ज्ञान तो परम ज्ञान ही है, क्योंकि भगवान स्वयं देते हैं। आपका प्रश्न है? यस, ये हिंदी में है। एज यू सेड पुण्य, व्हाट इज दैट, पुण्य से दुख है, पुण्य भी पुण्य से भी दुख होते, तो क्या हम पुण्य न करें? पुण्य क्या है? पुण्य कर्म है जिसमें उसका उद्देश्य है स्वर्ग प्राप्ति और भौतिक सुविधा मिलना, तो वो भौतिक पुण्य है, वो पाप से अच्छा है परंतु आध्यात्मिक नहीं है। और भक्ति में बहुत कुछ जो करना है तो वो पुण्य कर्म जैसे है, जैसे यज्ञ करने हैं, कर्मकांड्य लोग तो यज्ञ करते हैं भौतिक फल प्राप्त करने के लिए, और शुद्ध भक्तों जैसे पृथ्वी महाराज ब्रह्मा जी कहो हम कि ब्रह्मा जी पांच यज्ञ बनाए हैं सृष्टि का समय, सृष्टि के पहले। तो ब्रह्मा जी कहते हैं भक्ति भावना से, तो कर्म एक ही है, उद्देश्य पृथक है। जो लोग पुण्य कर्म कहते हैं भौतिक फल प्राप्त करने के लिए, वो भौतिक फल प्राप्त होते वो ही पुण्य कर्म है। और जो भगवान की भक्ति में वो सब करते हैं वो साधारण पुण्य कर्म नहीं करते, वो भक्ति उन्मुखी पुण्य, उसको भक्ति उन्मुखी सुकृति बोलते। तो पुण्य साधारण पुण्य कर्म करने में कुछ भक्ति का संबंध भी है। जैसे लोग गौ सेवा करते हैं वो एक पुण्य कर्म है, परंतु चूंकि गाय भगवान कृष्ण की प्रिया है इसलिए कुछ भक्ति पॉइंट्स मिलते, उसका संबंध है भक्ति में। और यज्ञ करने में वो यज्ञ पति है यज्ञ भूख, यज्ञेश्वर है नारायण, तो यज्ञ में नारायण की स्मृति होती है। तो इस प्रकार पुण्य कर्म करने से तौरस भक्ति का संबंध होते हैं। और यदि एक पुण्य कर्म ऐसे एक शुद्ध भक्त का संग मिलते है, वो वेद शास्त्र का वास्तविक अर्थ समझ सकते हैं, क्योंकि पुण्य कर्म करने से मन तो अति दुष्ट नहीं होते, मन तो शुद्ध नहीं होते परंतु दुष्ट भी नहीं होते। और चूंकि उसमें भक्ति भावना कम से कम थोड़ी होती, तो उस पुण्य कर्म करने से वो थोड़ा सा सुकृति होती, वो पूरी भक्ति नहीं है तो भक्ति उन्मुखी सुकृति होती है। तो पुण्य कर्म करने चाहिए यदि वो अनुकूल है कृष्ण भक्त, यदि हम शुद्ध भक्त होना चाहते हैं तो हमें पुण्य कर्म करने चाहिए जितने भी वो अनुकूल है भक्ति में। मां का शायद भागवत में लिखा है गरीबी की मदद करे, ऐसा है वो गृहस्थों का धर्म है
कि वे समाज में है और इसलिए उनका धर्म है। गरीब लोगों को खिलाना वो ऐसे पुण्य कर्म करना है, लेकिन भक्ति में यदि भक्ति में अनुकूल होते, इसका मतलब है कि यदि कोई वो गृहस्थ के घर के पास आते हैं गरीब व्यक्ति, तो उसको कुछ खिलाना है, तो वो गृहस्थों का धर्म ही है। और यदि कृष्ण प्रसाद खिलाते हैं तो वो साधारण पुण्य कर्म नहीं होगा, वो भक्ति भक्ति ही है। परंतु भक्तों तो विशाल आयोजन नहीं करते हैं, भूखियों को खिलाना और इस प्रकार घोषणा करते हैं हम पुण्य कर्म करते हैं, तो ऐसे नहीं है। भक्तों चाहते हैं कि सब लोग कृष्ण प्रसाद लेंगे और कृष्ण नाम कहेंगे और भगवद गीता यथारूप ज्ञान मिलेंगे। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने कहा कि केवल भूखियों को खिलाना नहीं होने चाहिए, यदि हम भूखियों को प्रसाद देंगे तो साथ साथ हरि कीर्तन होने चाहिए और साथ साथ भगवद गीता प्रचार होने चाहिए। तो हम पुण्यकर्मी नहीं है, हम कृष्ण के भक्तों के सेवक है और इस प्रकार हम कृष्ण भक्ति करने चाहते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम का कथा मतलब है क्या है, क्या मतलब है? राम रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानन्द चिरात्मनि इति रामपदेना सो परं ब्रह्म विधीयते। राम है भगवान का एक नाम जिसका अर्थ है वो परम ब्रह्म, जिसमें योग्या जो भौतिक तुच्छ सुख से उदासीन है, वो परम ब्रह्म जिसमें अपार परमानंद ही है, जो परमानंद का आधार और आस्पद है, वो परम ब्रह्म को राम बोलते हैं। सत्यानंद आत्मानंद, तो राम सामान्यतः हम समझते राम भगवान का नाम है, विशेषकर दशरथ की पुत्र राम, तो वो रामचंद्र अयोध्या राम राम ही है, बलराम भी राम है और परशुराम जो यहाँ कुरुक्षेत्र आए थे वे भी राम है और कृष्ण भी राम है, क्योंकि राम भगवान का नाम है। तो हरे राम हे राम हे कृष्ण, हरे कृष्ण हे राम, मुझे आपकी सेवा में लगाए। तो राम बोलने से बलराम रामचंद्र परशुराम या कृष्ण समझना है। राम नाम तारक है और कृष्ण नाम पारक है, अर्थात राम नाम से मुक्ति मिलती है और कृष्ण नाम से प्रेम भक्ति मिलती है, ये सब वर्णन है श्री चैतन्य चरितामृत में। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।
श्रीमद् भागवत गीता की जय। श्रीमद् भागवत गीता यथारूप का वितरण की जय। Oh, okay. So we'll go early now. Okay. So I should leave at what time? I can meet a few devotees. I still have a few rounds. Two rounds. I can chant on them. Signing? Okay. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama.